मानुष शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में निर्गर्दमान महान गुण विचरे समान। समय सार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार आरंभ करना है। जीवा जीवाधिकार के टीका की जो अंतिम पंक्ति थी उसमें ये लिखा था इति जीवा जीवौ पृथक भूत्या निष्क्रांतौ। अब इस प्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर निकल गए। कहां से निकल गए? रंग भूमि से, अखाड़े में से, आज की भाषा में स्टेज पर से, रंग मंच से आए थे। दोनों इकट्ठे बनते और नाम रखा था उस अपना जीव, उसमें मिक्सचर बहुत था अजीब का। उसमें 29 प्रकार के भाव मिले हुए थे और नाम रखा था जीव। तब 29 प्रकार के भावों से भेद विज्ञान कराया तो मानो वो जीव और अजीव स्टेज से पृथक हो करके निकल गया। एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया। अब ये दोनों पृथक हो करके निकल गए। अब इस पंक्ति से अगली कर्ता का नाम अधिकार की पहली पंक्ति मिलाओ। अथ जीवा जीव कर्तिक्रम भेषेण प्रवस्था। अब बे जीव अजीव ही, ये है ना, बे जीव अजीव ही कर्ता और कर्म के भेष में प्रवेश करते हैं। एक कर्ता बन के आया और एक कर्म, तो जीव बना कर्ता और अजीव बना कर्म। क्योंकि जीव ऐसा मानता है कि मैं ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा किया, अपना करना तो मानता ही है, तो सारी देह की क्रिया का कर्ता भी वो स्वयं ही बनता है। देखो जरा गंभीरता से विचार करना। पूज्य गुरुदेव श्री की यदि कोई सबसे बड़ी उपलब्धि इस काल में अध्यात्म के क्षेत्र में मानी जाएगी तो वो यह होगी कि उन्होंने इस धर्म की नाव को क्रियाकांड और शुभ भाव के बदंबर से निकाला। सारा जगत शुभ क्रियाओं और शुभ भाव में धर्म मान रहा था और उन्होंने लगातार 45 वर्ष तक इस पर गहरी चोटें की। उसका फल ये निकला, उसका फल ये निकला कि आज ये कम से कम जो अपने को मोक्षु मानता है, उनका अनुयायी मानता है, वो ये जो बाह्य क्रियाकांड जितना है इसमें एक एक का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक अपनी बात समझ लो आप, इसमें पूजा पाठ व्रत शील संयम यात्रा दान वगैरह सब आ जाती है। ये शुभ क्रियाएं और तत्व संबंधी शुभ भाव धर्म नहीं है, धर्म के कारण नहीं है। इन्हें करते करते धर्म प्रकट होगा ऐसा नहीं है, इस बात में पक्की आस्था रखता है। ठीक है ना, ये बात। इतनी उपलब्धि, गुरुदेव का इतना देन है और हमारे लिए इतनी उपलब्धि है कि आज इसके लिए हमें इस मोक्षु समाज में झगड़ा नहीं करना पड़ता। ये बात समझाने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती है। गैर मोक्षु समाज में तो इसके लिए भी करनी पड़ती है। अब हमारे एक खतरा और पैदा हुआ कि वो जो पूजा पाठ वाला क्रियाकांड और शुभ भाव थे, वो तीर्थ यात्रा वाले क्रियाकांड और शुभ भाव थे, वो दान देने वाले क्रियाकांड और शुभ भाव थे, उनमें तो से तो हमारी धर्म बुद्धि निकल गई। उसके लिए गुरुदेव बोलते कि लसन खाते खाते अमृत की डकार नहीं आएगी। ये लसन है और धर्म जो शुद्ध भाव रूप है वो अमृत है, क्योंकि इनके का अभाव करके वो धर्म प्रकट होता है। लोग कहते इससे प्रकट होता है, अशुभ से शुभ में आएंगे और शुभ से शुद्ध में जाएंगे। तो शुभ से गए, उससे माने वो उसे साधन समझता है, क्योंकि करण को साधन माना जाता है, उससे करण की निशानी है। गुरुदेव ने हमें बताया कि इस शुभ भाव से गए, शुभ भाव को छोड़कर गए। यदि जिस चीज को छोड़कर गए उससे जाना मानेंगे और उसे कारण मानेंगे, तो इसी न्याय से अशुभ भाव से शुभ भाव में आते हैं तो शुभ भाव का कारण अशुभ भाव को मानना पड़ेगा। पुण्य को छोड़कर धर्म में गए तो पुण्य को कारण माना, तो पाप को छोड़कर पुण्य में आए तो पाप पुण्य का कारण पाप को मानो। कोई मानने को तैयार है? जिसे छोड़कर आते हैं उसे कारण बनने का उपचार भले ही करें, उसमें क्या उसे इस भाषा में बोलते हैं शुभ भाव से धर्म नहीं होगा, लेकिन जब भी शुद्ध भाव प्रकट होगा तो शुभ भाव के काल में ही प्रकट होगा, ऐसी भाषा में गुरुदेव ने हमें बताई। लेकिन शुभ भाव से नहीं होगा, उसे उसी भाषा में कहते हैं तो परिस्थिति बताई कि जब शुद्ध भाव प्रकट होगा तो उसके पहले क्या परिस्थिति होगी। मुखिया हाँ देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे वो क्रियाकांड अपन का निषेध जब समाया हुआ है, अब ये नया क्रियाकांड हम विकसित कर रहे हैं। वो जैसी पोजीशन उसकी थी वैसी पूजन पोजीशन इसकी है। जैसे ध्यान शुद्धोपयोग है, आत्मध्यान शुद्धोपयोग, जैसे कर्म का नाश होता है, शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग। तो शुद्ध परिणति तो अशुभ शुभ के काल में भी रहती है, अशुभ के काल में भी रहती है। जैसे एक कसाई के अभाव रूप शुद्ध परिणति प्रकट हो गई तो उस काल में अशुभ भाव भी रहते हैं तो भी अंदर में शुद्ध परिणति रहती है ना, शुद्ध। और दो कसाय के अभाव में अनुवृत महावृत हो गए तो उस वक्त भी बाहर में शुभ भाव रहते हैं, कभी कभी अशुभ भी होते हैं, और फिर भी वहां अंदर में शुद्ध परिणति रहती है, तो वो तो मोक्ष का ही कारण है ना। फिर छठवें गुणस्थान में जाओ तो निदान नामक आर्थ ध्यान होता है, और निदान नामक आर्थ ध्यान तो तुरंत गति का ही कारण है ना, अशुभ भाव है कि नहीं है। हालांकि टोडरमल जी ने लिखा है कि वहां अशुभ भाव की सत्ता ही नहीं रही, बहुत स्थूल कथन है, बारीकी में जाएंगे तो वहां अशुभ भाव दिखाई दिया ना, फिर भी वो शुद्ध परिणति है तो वो तो मुक्ति का मार्ग है। लेकिन शुद्धोपयोग नहीं है, ध्यान शुद्ध परिणति को नहीं कहते हैं, शुद्धोपयोग को कहते हैं, तो सीधा मुक्ति का कारण है जिसे करने की अपन बात करते हैं। ये कहते हैं सबसे उपयोग हटाकर अंदर में ले जाएं, इधर आत्मा में ले जाएं, ऐसी बात करते हैं कि नहीं। अब जैसे कि जब उसके पहले जो क्रियाकांड होता है ऐसे आसन लगा के बैठ जाएं, ऐसे कर जाएं, ऐसे कर जाएं, फल में ही ना, और अथवा जो शुभ भाव होते हैं, जो विकल्पात्मक चिंतन होता है, तो वो उसकी पोजीशन वो ही हो गई ना, जो शुद्धोपयोग के पहले चाहे देवसाक्ष गुरु की स्थिति का भाव हो गए और चाहे तत्व चिंतन का भाव हो गए, चाहे यात्रा का भाव हो गए, वही भाव हो गए ना, तो हम फिर उस उन क्रियाओं को और उन भावों को ध्यान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। बिल्कुल वही पोजीशन है। यदि गुरुदेव की वाणी को देखें तो उन्होंने तो सभी प्रकार की शुभ क्रियाओं और शुभ भावों का निषेध किया था, मोहनलाल जी, मेरे तर्क ख्याल में आ रहा ना आपके में, और हम इस तरह की क्रियाओं का तो एक विकसित करने लग गए। ये उससे ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि वो शुभ क्रियाएं और शुभ भाव तो गुरुदेव श्री के यहां भी होते थे, पूजा पाठ व्रत शील संयम तीर्थ यात्रा दान होता था कि नहीं होता था, और उनकी वे अनुमोदना भी करते थे, और ये कहते थे कि धर्म नहीं है, ऐसे कुछ होगा नहीं, लेकिन पुण्यबंध होगा, धर्म कर्म नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी होने देते थे, अपनी देखरेख में करवाते थे। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ये जो ध्यान के जो का ढोंग चलना लग गया है आजकल, ये तो उनने कभी नहीं किया ना 45 साल तक, वहां तो इसकी क्लास नहीं लगी ना। यदि वे आपके आदर्श हैं और आप उनको अपना गुरु मानते हैं तो कम से कम उनके मिशन में तो इसका प्रवेश नहीं होना चाहिए ना। ये उनका विरोध कहलाया या उनका समर्थन, वो तो सोचो आप। मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे को बोलने को बाध्य किया जाता है, इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण करता हूं, क्योंकि ये बहुत तकलीफ खड़ी हो रही है। आप समझे, उनने नहीं किया और भगवान महावीर से लेके आज तक कभी भी इस टाइप की, जिस टाइप की जो भी चलाता है, जिस टाइप की, मैं नहीं कहता वो कौन कैसी चलाता है, तो कोई कहता कि मैं नहीं कहता हूं कि ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, कोई कहता मैं नहीं कहता होगा, हमने कोई एक के लिए थोड़ी कहता, जो कहता है उसने उसके लिए कहा है, लेकिन कोई ना कोई क्रियाकांड कराते हो ना। लेकिन वो महावीर से लेके आज तक कराया कहीं मिलता है कि उनके यहां ये चलता था? ये आता है कि साहब ध्यान को पढ़ा तो सकते हैं, एक तरह ये आया था, तो पढ़ाने को ऐसी क्लास लगाओ ना। मैं पूछता हूं कि ध्यान को पढ़ाने के, समझाने के लिए वो ऐसी क्लास लगा, ध्यान करा के बताना पड़ेगा? अपन पूजा का स्वरूप यहां समझाते हैं तो यहां पूजा कर करके दिखाते हैं क्या? क्यों पूजा का अर्थ बताते हैं तो पूजा का ऐसे कर करके बताते हैं क्या? और बताने में क्या है? वे आठ द्रव्य रखे हैं, एक कमले थाली में जल का ठंड बोलो, जल चढ़ा दो, चंद चढ़ा दो, एक सेकंड का काम है, और वो बिना प्रैक्टिकल के भी बताया जा सकता है, और प्रैक्टिकल हम करेंगे तो लोग देख लेंगे जाकर के, उसके लिए शिविर की क्या जरूरत है? ऐसे ध्यान के लिए ऐसे बैठना, पाद पद्मासन लगा के कौन नहीं जानता, पीठ की हड्डी सीधी रखना कौन नहीं जानता, आंखें बंद रखना, उपयोग को अंतर्मुख करने की मैं रहना है कौन नहीं जानता, शिविर की क्या जरूरत है? ध्यान का स्वरूप बताना है तो त्वासूत से राजवार तक, श्लोक वार्तिक तक सब जगह बहुत विषय वस्तु है, बताओ ना। लेकिन वो ध्यान के समय आज ध्यान की कोई बात नहीं करता, रोज ध्यान की बात नहीं करता, शुक्ल ध्यान की बात नहीं करता, धर्म ध्यान के आज्ञा बिताए, उपाय बिताए, विभाग बिताए, संस्थान बिताए, ये उनकी कोई बात नहीं करता, बस वो एक उस क्रिया को देह की क्रिया की प्रक्रिया का प्रैक्टिस कराते हैं, उसे ध्यान का शिविर कहते हैं। माने वो ही क्रियाकांड ज्यादा विकसित हो रहा है। देखो वो उससे खतरनाक क्यों है? क्योंकि गुरुदेव के यहां वो सब चलता था, वे ये नहीं कहते थे कि तीर्थ यात्रा पे मत जाओ, वे मत कहते थे पूजन मत करो, वे मत कहते थे स्वाध्याय नहीं करो, वे नहीं कहते थे दान मत दो, कभी कभी प्रेरणा भी देते थे, लेकिन इनसे पुण्य बंद होगा, धर्म नहीं होगा, और वे भी भाव पवित्र होंगे, शुभ होंगे, तो यदि मानादि की इच्छा होगी तो पुण्य भी नहीं बंधेगा, ये कहते थे, क्यों कहते थे ना। लेकिन इसके तो वे करते ही नहीं थे। यदि इसकी जरूरत होती तो वो करते ना। तो कहीं भी ये बताओ मुझे, चल नहीं कि ये बिल्कुल वही शरीर की क्रिया जिसे आप बोलते हैं ना, वो बाही की क्रिया जिसे हम शुभ क्रियाओं को हमने दो भेद में बांट दिया ना, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया, इस वास्तव में पुद्गल की क्रिया में शुभ अशुभ का कोई भेद है नहीं। फिर भी वो भाव की अपेक्षा, आज तुम्हारे भाव हैं कि जीव मरना जाए ऐसे देख देख के चलें, तो हमने उस चलने को शुभ क्रिया कह दिया, और तुम्हारे भाव इसके प्रति उदास हैं, ऊपर को मुंह देख के चल रहे हो, तो हमने उसे शुभ क्रिया नहीं कहा। अतः तुम्हारे पैर में कांटा ना चुभ जाए इसके लिए देख देख के चल रहे हो, तो भी हमने तुमको उसको शुभ भाव नहीं है, शुभ क्रिया कहा, नहीं कहा। समझ गया आपने भाई ने, जितना भी इंद्रिय समिति, भाषा समिति वगैरह सब हैं, लेकिन इसके बारे में तो उन्होंने कहा ही नहीं है। और ये तो हर एक चीज में होती है कि पूजा करनी है तो भाई ऐसे दुपट्टा धोती दुपट्टा पहन के आओ, ऐसा अष्ट द्रव्य लगाओ, थाली में एक लगाने का एक क्रम है, ऐसे धोया जाता है, क्यों? ऐसी बात तो साधारण आधे घंटे की बताने की है, वो आधे घंटे में ध्यान की भी बताई, कैसे बैठ के ध्यान करना, क्यों? आचार्यों को तो ये चिंता हुई कि ये जीव ये न समझ ले कि हम वैसे जैसे बैठ के हमने बताया था ध्यान करने का, यदि ऐसे बैठा नहीं तो ध्यान हो ही नहीं सकता। यदि पैरों में घुटनों में दर्द हो गया हो और पालथी नहीं मार सकते, पद्मासन नहीं लगा सकते, क्यों? और ऐसी पोजीशन है कि खड़े नहीं हो सकते, तो दो ही ध्यान गए, दो ही आसन गए ना, पद्मासन अर्ध पद्मासन और तुम्हारा खड़गासन। तो अब मेरा मनुष्य तो गया, मैं इस मनुष्य में ध्यान नहीं कर सकता, तो उन्हें ये लिखना पड़ेगा बेटा लेटे लेटे भी होता है, क्यों? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किसी क्लास में ध्यान वालों ने ये बताया कि ध्यान लेटे लेटे भी हो सकता, जब ये आसन ही बताए। समस्या तो उल्टी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, वो हमारे सावधानी के आसन हैं, तो अच्छी बात है कि सावधानी से आसन रहना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे आप लोग सब नीचे आप लोग को पद्मासन लगा करके बैठे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन ये लोग जो कुर्सियों पर बैठे हैं तो सास कुर्सी पर बैठ के सुनना चाहिए, इस कुर्सी पर बैठ के करना चाहिए प्रवचन, क्यों? पहले बैठे से कितना वो होता था विरोध, फिर धीरे धीरे सबके घुटने ऐसे होने लग गए, फिर शिखर जी की वंदना डोली से करना चाहिए दूसरों के कंधे पर बैठ के, क्यों? तो होने लग गए ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो हर पर ध्यान को हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, शरीर उसके आसन के काबिल हुए तो और नहीं हुए तो, समझ गया? अब वो ही वो खो रहा है, समझ गया ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव श्री ने जिस जड़ की क्रिया, देह की क्रिया और शुभ भाव में धर्मत्व का निषेध कितनी बड़ी कीमत चुकाकर किया, आज हम उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के नाम पर बनाए हुए संस्थाओं में और वो ही क्रियाओं का आरंभ कर रहे हैं, कहां तक? इसलिए इसमें जो अपना पहला ही कलश है, उस कलश में एक शब्द इसमें ऐसा है जो हमें इस बात की तरफ संकेत करता है, जो पढ़ते हैं, एका करता देह में कर्म को पादयो मी, एका करता चिदेह में, एक चैतन्य आत्मा में करता हूं और कर्म कोपादयोमी, तो क्रोध आदि मेरे कर्म हैं। अब यहां पर जो क्रोध आदि मेरे कर्म हैं लिखा, तो ये क्रोध आदि क्यों लिखा, ज्ञानावरण आदि क्यों नहीं लिखा? एक कर्मों की बात है क्या, किसकी बात है? वास्तव में वहां लिखा वर्णादि और रागादि और यहां लिखा क्रोधादि, बाद में भाई 29 भाव भी चल रहे हैं, किसी नाम से आए, समझ रहे? हम समझते हैं कि वहां तो भाई वो वर्णादि से भिन्न बताया, रागादि से भिन्न बताया, यहां क्रोधादि की बात करने लग गए। क्रोधादि माने भी 29 प्रकार के भाव, कैसा? क्रोध तो भाव है आत्मा का विकारी, तो यहां तो रागादि की बात आ गई, क्यों भैया? वो क्रोध नामक एक द्रव्य कर्म भी है और एक क्रोध नामक भाव कर्म भी है, जो गुस्सा तुम्हें आता दिखाई देता है ना, ज्ञान का के वो भाव कर्म है और उसमें जो क्रोध नामक कर्म का उदय निमित्त है वो द्रव्य कर्म है और नो कर्म भी है। आंखें लाल लाल हो रही ना गालियां बकरे मुंह से, ये नो कर्म है, ये शरीर में आई ना उसकी असल विकृति। तो सब ले लेना, ये सब तरह के क्रोध ले लेना, इसमें आगे बढ़ना भी और आगा भी सब आ गए। एक पहला पॉइंट तो ये है, क्या समझ गया? अब वो कहते हैं कि वहां उसने जीव अजीव के भेष में आया था, तो इन्होंने कहा नहीं भैया ये दो चीजें हैं एक नहीं है। तो अब वो कहता है कि ये भैया दो तो हैं लेकिन ये दोनों के ही काम मैं नहीं किए, कौन सा माने ज्ञानादि भी मैंने किए और रागादि भी मैंने किए और वर्णादि भी मैंने किए, इस सब का कर्ता मैं हूं। देखो मैंने एक दफे कहा था कि हमने ये काम जो अपने माथे पर लिया है ये इतना कठिन है कि इससे उल्टी बात हमें समझाने को दो तो हम 100 गुनी कम मेहनत में और आसानी से लाखों लोगों के गले उतार सकते हैं क्या। लेकिन ये बात में हम 100 गुनी मेहनत करके भी 100वें भाग लोगों के गले नहीं उतार सकते, क्यों बोलो? हम सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 किलोमीटर घूमते हैं, फिर वो आजकल जिम हो गए ना, जिम में जाते हैं और उस मशीनों पर उल्टे सीधे होते हैं 2 घंटा, क्यों? और फिर खाने में भी हमने चिकनाई मिकनाई बिल्कुल बंद कर दी है और हमने फिर 6 महीना में 20 किलो वजन कम किया है? अब उस मूर्ख को समझाओ तुम कि तुमने कुछ नहीं किया, वो उसके गले कैसे उतरे, कितना कठिन काम है। और बेटा तुमने बहुत बढ़िया किया, तुम शाबाशी है, ये एकदम सारी जगह तुम भी करना, जिनको वजन कम करना हो ये सब करना। देखो ऐसा होता है ना, इसने कर लिया तुम कैसे नहीं कर सकते हो, तो एक बोले कौन सी सरल बात है? समझे ना, ये क्रिया कांड के पक्ष में बोलना बहुत सरल है और उसके विपक्ष में बोलना बहुत कठिन है। एक भाई मेरे पास आए थे कल, और 2-3 दफे भी मिले थे, मेरे समय चाहिए आपका 10 मिनट, समय चाहिए। मैं नाम नहीं जानता हूं, वो अभी यहां हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, मुझे ख्याल नहीं ज्यादा। तो मैं बैठे तो यही बात चलाई, ये क्यों लिखा, ये सब ले आए थे, ये लिखा ज्ञान आर्डम में लिखा, फलाना आर्डम में लिखा। मैंने सारे जंगल मैंने घूमे हैं, ज्ञान आर्डम समझते हो, अर्णव क्या होता है बबलू, जंगल, ज्ञान आर्डम माने ज्ञान का घना जंगल। लेकिन भाई वो तो सब क्रियाएं बताई हैं, जब पंच कल्याण प्रतिष्ठा विधि की किताब लिखेंगे और मुझसे ही लिखवाओगे तो मैं यही लिखूंगा ना, ऐसा मंत्र करना, ऐसा बोलना, ऐसा करना, इसके ऐसे चढ़ाना, फिर ये करना, ये फलानी पूजन करना, फिर फलानी पूजन करना, वो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? तो कहे तुम्हें ही नहीं लिखे सब, ये करना ये करना ये करना, और तुम कहते आत्मा कुछ करता ही नहीं है। ये अपेक्षा है उसमें मैं बता रहा हूं ना, लेकिन आप सारी जिंदगी गुरुदेव के तत्व ज्ञान में रहे, उसके लिए समर्पित रहे तो सब माना है, लेकिन फिर इस चक्कर में फंस गए, वो पूजा पाठ के क्रियाकांड को, दान के क्रियाकांड को, यात्रा के क्रियाकांड को, आज कोई धर्म कहने की, मुक्ति का कारण कहने की कोशिश करे तुम्हें गला पकड़ लोगे, भाई नए टाइप का आया तो तुम चक्कर में आ गए। तुम पूजा पाठ दान से धर्म होता है क्यों? ये शास्त्रों में नहीं लिखा है? वो अन्ना जी आपकी किताब है ना, वो सत्रुणमणि, उसमें लिखा है ना, गुरु भक्ति सती मुक्ति क्षुद्रम किम्बान साधयेत्। क्या अर्थ है इसका? गुरु भक्ति से तो मुक्ति मिल जाती है, तो छोटे छोटे काम क्यों सिद्ध नहीं होंगे? साधारण नीति का वाक्य है। और सीधी सच्ची बात, गुरु भक्ति माने तुम्हारे अध्यापक की भक्ति, के गुरुदेव की भक्ति, या किसी गुरु की भक्ति, स्वभाव रूप भक्ति, उसका नाम नहीं है। वो तो गुरु भक्ति काय को मानते हैं, आत्मा के अनुभव को गुरु भक्ति कहते हैं। आता ना जो थाप नज में मुक्ति भक्ति निर्वृत्ति भक्ति लिखी क्या नहीं लिखी, वो भक्ति कहते हैं, और वो मुक्ति उन्होंने लिखी। एक अर्थ दो है, और फिर क्षुद्रम किम बना साधे, कि वही क्षुद्र काम भी से मोक्ष भी पहुंचा देगी वही भक्ति, और वही छोटे छोटे काम, क्षुद्रम कहने जुकाम भी ठीक कर देगी, सर्दी भी ठीक कर देगी। वो ऐसे ही तर्क है ना कि एजा दवाई कैंसर ठीक कर देती है, तो तुम्हारे साधारण फोड़े को ठीक नहीं करेगी, तुम्हारे जुकाम को ठीक नहीं करेगी, तुम्हें कम दिखता है आंखों से ठीक नहीं करेगी, खा लो कैंसर की दवाई और जुकाम ठीक कर लो। क्यों? अभी उसकी धज्जियां उड़ानी हो तो बहुत आसानी से उड़ानी जा सकती है, कि धज्जियां उड़ने लायक ही बात है। तो बहुत सामान्य नीति का वाक्य है कि भैया तुम कह रहे हो ऐसे हमारा काम सिद्ध नहीं होगा, बड़े बड़े काम सिद्ध होते हैं। अरे वो मुक्ति होगी क्योंकि वो हमारा काम है, और एक छोटे क्षुद्र काम है, दूसरों के काम है जिसमें हमारा रंचमात्र भी चलता नहीं है। क्यों? जो हमारा मंत्र बड़े बड़े भूतों को भगा देता है वो तुम्हें नहीं भगा पाएगा। क्यों? बोलो मंत्र, भगा दो एक आध को यहां से, मंत्र बोल बोल के एक आध श्रोता को भगाओ यहां से, और मैं दूसरा मंत्र देता हूं तुम्हें, अब भी हाल भगा के बता दूं तुम कहो तो, जिसको दो उल्टी सीधी सुना दो उठ के भग जाएगा। क्यों? समझ में आई ना? और ये तो ये महामंत्र हो गया, गालियां देना महामंत्र हो गया ना, क्यों भगा तुम्हें तो उसका फल आना चाहिए तत्काल, कि हम ये भगा सकते हैं तो भगा दिया ना। अब द्वारा मुझे बाउंड्री में देखे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? एक महामंत्र है कि फिर अब वो आएगा भी नहीं, किल दिया हमने टोटल मन से मारा। क्या है? तो ये मेरे कहने का अर्थ यह है कि यहां तो वो भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। वो ये कहता है कि ये मैंने किया है, मैं हूं तो अलग अलग दो भेद बना के आ गए, एक कर्ता बन के आ गया और एक कर्म बन के आ गया। ये मेरा वर्क है और मैं इसका कर्ता हूं, बताइए ना, ख्याल में है ना? अभी ये कितना व्यवहार होता है कि नहीं? अभी देखिए, अपना शिविर चला, उसमें आपने जो कोई वो क्या रखा था 7 तारीख को, उसमें इनने ये किया, इनने ये किया, इनने ये किया, सबको प्रमाण के रूप में पेश करो ना। क्यों? यहां तो ये कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों? ऐसा कहकर तुम मोह में मत नाचो। बोलो, एक किए की भाषा कितनी ज्यादा है और नहीं किए की कितनी है आगम में। वो मैंने आप कुछ भी कहो कहानी है ना, उसी पहली कहानी में यही लिखा है, पढ़ी तो होगी आप सब लोगों ने, कि वे बादीराज मुनिराज हैं, उनके शरीर में कोट था, वो कहानी नहीं सुनाऊंगा पूरी अब, और फिर वो ठीक हो गया। अब सब लोग आए कहने लगे महाराज गजब कर दिया, गजब कर दिया, आपने शरीर के कोट को ठीक कर दिया। उन्होंने कहा भैया मैंने कुछ नहीं किया। एक तो एक द्रव दूसरे का कुछ कर नहीं सकता, दूसरे मैंने विकल्प तक नहीं किया कि मेरा कोई ठीक हो जाए। बोलो, इस विकल्प का भी मैं करता नहीं हूं, और मैंने जो भी आपने सामायिक वगैरह की वो मेरी दैनिक क्रिया थी, उससे हटकर मैंने कुछ नहीं किया और इस उद्देश्य से कुछ नहीं किया और इस टाइप का विकल्प भी नहीं किया, लेकिन हो गया ना, हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं इसके लिए। और उन्होंने बताया कि देखो यदि मेरे कहने से होता तो इतना बाकी क्यों रहता, इतनी उंगली में अभी भी है और बाकी शरीर में हो गया। क्यों? उन्हें प्रमाण के रूप में ये पेश किया। फिर सारे लोग कहने लगे, महाराज आप कुछ भी कहो पर हम तो यही मानेंगे कि आपने किया। तो क्या कह रहे, इसलिए किताब का नाम आप कुछ भी कहो क्यों लिखा, समझ में आए ना? माने तुम खुद करो, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, हम तो यही मानेंगे क्योंकि हमारी कर्तृत्व बुद्धि बहुत मजबूत है। अरे तुम्हारे उस भगवान के समोसन में जाकर के भी नहीं टूटी है, तुम्हारे इतने थोड़े बहुत वक्त करने से कुछ नहीं होने वाली है। क्यों? अब उसी उंगली के कोड को हमारे उन पंडितों ने, क्योंकि ये कोड क्यों बता रहा था आचार्य, तो ये कह रहे और वे क्या जवाब देते हैं कि उनने ही बता के रखा, क्योंकि कल कोई कहेगा कि ये मुनि दूसरे आ गए होंगे, वे कोड़ी चले गए होंगे, तो मैं ही वो मुनि हूं जिसे कोड़ था, उसकी निशानी कहां बढ़ा दी, कहां बढ़ा दी उसे। अरे महाराज उसी के लिए किया, अब तो ठीक कर लो हमारे सामने फटाफट, इतना तो अभी हमारे सामने करके बता दो ना। दादा समझ में आया तर्क नहीं आया कि अब बता दो कि हमने किया ही नहीं है, हम क्या बता दें कि अब आप बताते नहीं हो, आप कुछ भी कहो हम तो यही मानेंगे। मैंने सारा जगत में आप कुछ भी कहो का मंत्र सीख लिया है। गुरुदेव 45 साल तक कुछ भी कहें, हम तुम कुछ भी कहें, ख्याल में आए ना, लेकिन हम तो वो ही नहीं मानेंगे। वे कह रहे चौथे गुण स्थान के पहले धर्म ध्यान होता ही नहीं, कि डंके की चोट कह रहे कि नहीं कह रहे। अब वे कह रहे कि हम ना भी बता दें तो हम करके बता देते हैं, देखो हम अभी ट्रेनिंग 8 दिन में तुम्हें सिखा देंगे ध्यान करना। किसको, जैन को, अजैन को, हिंदू को, मुसलमान को, हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं है। माने गीत में था ऋषि को भी हम ध्यान करना सिखा देंगे, क्यों? वो पक्षपाती कहलाते हैं, कौन कहते तो जाति का भेद रखते हैं। इस देश में कुछ महान लोग पैदा हो गए ना, कि ना जिन्हें जाति का मतलब है, ना जिन सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि से मतलब है, ना जैन अजैन से मतलब है ना। और तुम्हारे साथ में तो लिखा है गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को भी होता है, तो जो हमारे मुसलमान गाय भैंस कुत्ते बिल्ली से भी गए जीते हैं। मैंने एक दफे सुनाया था साधा आप लोगों को, याद है कुछ के नहीं, कि हम अमेरिका में मैं बहुत दिनों से त्रिकाली धर्म समझाते एक भाई ग्रुप था, वो इतना पक्का और कट्टर हो गया कि वो और कुछ करता नहीं था, यही करता था निरंतर स्वाध्याय वगैरह वगैरह, बहुत पक्का। और जब मेरे से उनने प्रश्न किया कि साहब हमने ये सारी बातें आपकी सीख ली, सब समझ लिया, और फिर भी हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता, हमने बहुत कोशिश करी, तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम छोड़ो इस बात को, तुम जो मैं समझा रहा हूं वो समझो। बोले नहीं नहीं आप बताओ कारण क्या। मैंने कहा मैं कारण बताऊंगा तुम सुन नहीं सकते। क्या बात करते हैं आप साहब, इतने दिनों से 10 साल से आपका सुनते हैं, और कैसा हमने पढ़ा किया, अभ्यास किया, सब बात किया, और हम तो दूसरों की सुनने ही नहीं जाते हैं और आप ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा मैं कह रहा हूं कि तुम सुन नहीं सकते। बहुत पीछे पड़े सुशील जी, बहुत पीछे पड़े, डिटोएट की बात है। मैंने कहा अच्छा सुन सकते हो, देखो कि जब तक गृहित मिथ्यात्व तो नहीं छूटेगा तब तक तुम लाख कोशिश करना कि तुम्हें आत्मा का ध्यान नहीं, सम्मा दर्शन नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं। गृहित मिथ्यात्व ने माने क्या असमने, मैं ज्यादा खोल के नहीं बोलूंगा। टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में जिन जिन लोगों को लिया, 6वें अध्याय में जिन लोगों को लिया, वो सब मेरे क्या बात करते हैं, इसे क्या लेना देना है, आप समझे, इसे क्या लेना देना है। हमने नमस्कार किया तो सामने वाले साफा बांधे थे कि बिना साफा के थे, इसे क्या फर्क पड़ता है, आंखों वाले थे कि बिना आंखों वाले थे, इसे क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे ना। और उस नमस्कार से क्या लेना देना है। और बुधवार के दिन चले गए उधर तो हम इससे क्या फर्क पड़ता है, और शुक्रवार के दिन उधर हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने तो आपकी विधि पूरी कर ली ना, मैं पर से भिन्न, राग से भिन्न, विकार से भिन्न, काल से भिन्न, लेकिन निर्विकल्प पूरी कर ली, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने भैया फर्क पड़ता है, बहुत समझाया उनने, बहुत मुझे आश्वासन दिया था क्या कि हम बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मैं उस गांव में ही नहीं गया, न उनने बुलाया न मैं गया। आप समझ गया कितनी मजबूत जड़ें हैं जी। अब उनकी क्या बात करूं मैं, जिनने यहां बरसों सुना, बरसों तत्व ज्ञान सीखा, अब वे वो ध्यान में चढ़ गए तो वो उनके ये मन के अनुकूल बात नहीं है तो उनने भी सुनना बंद कर दिया। उनकी क्या कहें, सात समुद्र पार की क्या बात करें, क्यों यदि तुम चढ़ जाओगे तो दुका उसमें तो हम तो भी हमारा एक श्रोता कम हो जाएगा। क्यों, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सत्य के श्रवण करने के लिए कितनी मन कसाय चाहिए, कितना सत्य के बाद चाहिए, कि तर्क युक्ति के आधार पर चाहिए। अब लिए फिरोगे कि देखो ये लिखा ये लिखा ये लिखा ये लिखा, अब क्या करें। अब तुम अपने मुंह से कह दो कि जी आचार्य झूठे हैं, हम झगड़ा कुछ दूसरा झगड़ा खड़ा शुरू कर दो तुम क्या। यहां एक समय दृष्टि को तुम व्यायाम शिक्षक बना दो, क्या करेगा वो, क्यों समय दृष्टि गवर्नमेंट की नौकरी तो कर सकता है ना, और वहां पर व्यायाम शिक्षक बना दो तो रोजीना समझाएगा ना कि तुम व्यायाम करोगे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तुम्हारा सब बताएगा कि नहीं बताएगा, ये आसन लगाओगे ये लगाओगे नहीं लगाओगे, वो व्यायाम की किताब जो है वही पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। और समय दृष्टि है तो सब समय दृष्टि साहब बता रहे, क्या करें। अब क्रोधादि लिखा हो तो भी 29 भाव समझना, वो उसका अब क्या कहते देह की क्रिया का कर्ता में और राग की क्रिया का कर्ता में, दोनों का निषेध कर रहे छावरा जी के नहीं है गोपाजी के, मैं ना देह की क्रिया का करता हूं और ना मैं राग की क्रिया का करता हूं। अरे तुम देह की क्रिया और राग की क्रिया में धर्म बता रहे हो, वो धर्म जिसे सीधा मोक्ष होता है। ध्यान तो सबसे बड़ा धर्म वो ही है ना जो अंतर्मुखन से केवल ज्ञान होता है, उसी ध्यान को तुम कहना चाहते हो। यदि उसके अलावा दूसरे ध्यान को कहना चाहते हो तो चार प्रकार के बताओ, फिर तो ध्यान से नरक भी जाता है तुरंत भी जाता है, उनको भी ध्यान ही नाम है कि नहीं, आज लोग ध्यान भी ध्यान ही है। लेकिन तुम तो उसी ध्यान की बात करते हो ना कि जितने लोग हैं वे आत्मा का अनुभव करने के लिए ही कम से कम मुख छू, वे आत्मा का अनुभव करने के लिए ही उस प्रक्रिया में जाना चाहते हैं ना। बोलो मोहनलाल जी, उनको और लौकिक ध्यान करना है क्या, तो उसकी विधि वो है क्या। तो कहते हैं कर्म कोपादयोमी इति अज्ञानम, क्या है अज्ञानियों की ऐसी मान्यता है। यदि ये नीचे की पंक्ति नहीं बोले और ऊपर की पंक्ति बोल के और हम दुनिया को बताएं कि देखो कितना कितना साफ लिखा है, एक मतार्थ की दृष्टि से एक श्लोक आता है उसमें काय में समाधि शतक में, उसमें ये लिखा अयत्न साध्यम मोक्षम वा, कि मुक्ति अयत्न साध्य है मुक्ति, वो मुक्ति का इन्हें ध्यान कर लिया। तो उसमें उनने सिर्फ चार वाक के हिसाब से ये लिखा कि जैसे चार वाक कहते हैं मौज करो खाओ पियो मौज उड़ाओ, कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, ऋणम कर्त्वा घृतम प्रभेत पत्नी भूषस्य देहस्य पुनरागतम कुतः, तो उनके विरोध में ये लिखा कभी ऐसी प्रवृत्ति वालों के ध्यान नहीं होगा, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये सब खोटी प्रवृत्तियां उन्हें त्यागना पड़ेंगी, तो छूट जाएंगी जब जाएंगे मोक्ष, जब कि नहीं बुद्धि पूर्वक त्यागनी पड़ेंगी। आप समझेंगे ना ऐसी, और उसके बताए उसको उठा के पेश कर लो, देखो ये लिखा। देखो मैं और बताता हूं आपको, हमको छठवा सातवां गुणस्थान का नग्न दिगंबर मुनिराज बनना है, तो कहते हैं कि जब तीन कषाय का अभाव हो जाएगा अन्ना जी, तब कपड़े अपने आप उतर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे अतिबाजी है ना अपने अध्यात्म में, वो छोड़ने थोड़ी पड़ते तो छूट जाते हैं, तो गांठ अपने आप खुल जाएगी, क्यों और छूट जाएंगे। और उनके यहां भी कहते हैं एक दुपट्टा डाले थे महावीर कंधे पे, वो अपने आप झाड़ी में उलझा और रह गया तो रह गया, बस खत्म। यानी बुद्धिपूर्वक उनने नहीं छोड़ा था, समझ ना। तो उनके लिए बताया कि नहीं, बिल्कुल सामने गुरु के सामने या देवसास गुरु के सामने या स्वयं बिल्कुल विकल्प पूर्वक कपड़े का त्याग, वस्त्र का त्याग, ये सब करना पड़ेगा, केश लुंच, ये सारी प्रक्रिया होगी, और फिर वो आत्मा में ध्यान करने बैठेगा तब सातवें गुणस्थान में जाएगा। कपड़े उतारते ही भरत चक्रवर्ती को हो गए, माने क्या तो कपड़े उतारते गए, कपड़े पहने पहने भी हो जाता, नहीं उतारते तो चले जाते अंदर। अरे अकेला कपड़े उतारते तो एक शब्द बोल दिया है, लेकिन बाकी पूरी जो प्रक्रिया है वो पहले संपन्न होगी, लेकिन उससे होने से वो प्रक्रिया होने से वो ध्यान नहीं हो जाएगा सातवां गुणस्थान। क्योंकि ऐसे कई लोगों ने छोड़ दिए, उतार दिए, और उनका तो बादशाही गुणस्थान से ही नहीं निकले थे, क्यों सारे कपड़े छोड़ दिए, कर दिए कर दिए। और मैं कोई किसी नकली आदमुनि की बात नहीं करता हूं, जो जिसको केवली भगवान के अलावा कोई नहीं पहचान पा गया ये नकली है क्या असली है, उन द्रिविलिंगी मुनि जो नौवें गरीब तक जाते हैं, आप समझिए ना, कोई नहीं पहचान सकता केवली के अलावा उन्हें, उनने भी उतार दिए ना, कितना धर्म कितना मजबूती से पाला, लेकिन नहीं हुआ ना सातवां गुणस्थान। तो सातवां गुणस्थान में जाने के लिए कपड़े बुद्धि पूर्वक उतरेंगे, उतारे जाएंगे, ये समझाने के लिए जो बात कही थी वो उनने उसको वहां पर लगा दिया, यत्न साध हो गई ना। हाँ ये करना पड़ेगा, तो यत्न साध हो गया। चार वाक्य के लिए ऐसे लोगों के लिए कहा है कि वो इसमें से निकलना चाहते हैं। अब सुने ना, ये अपना अष्टपहाड़ में गाथाएं हैं और समय सार में भी गाथा है अंत में, जिसमें लिंग का किसी भी लिंग से मोक्ष नहीं होता, तो वो कहते साफ साफ तो कहना है पुलिंग से मोक्ष होता ना, स्त्रीलिंग से ना पुंसलिंग से, किसी पुलिंग से तो मोक्ष होता ही नहीं, तो तुम पुलिंग होना चाहिए अनिवार्य शब्द क्यों लगाते हो, ये उसमें से ये निकालते हैं। अब कोई लिंग से रहे तो होगा नहीं, तीन लिंग में एक ना एक लिंग तो हो गई, तो लिंग से मुक्ति नहीं होती है, तो किसी भी लिंग से हो जाएगी। उन्हें कहा वस्त्र छोड़ने से नहीं होगा, वस्त्र तो ढोरों ने भी छोड़ दिए, उन्हें मोक्ष नहीं हुआ, लिखा ना बस छोड़ने से नहीं हो, चेता मलिए फिरेंगे उसको, देखो ढोरों ने भी छोड़ दिए। लेकिन वो अंदर का नहीं हो और बाहर के ऐसे नकली बस छोड़े तो नहीं होगा, ये तो दिगंबर आचार्य ने भी लिखा है। तो ये कर्ता कर्म की बात यही है कि करना पड़ेगा, हमें हम लौट के गिर के आ गए, उनको ये कर्ता कर्म अधिकार पढ़ना चाहिए किनको, वे फिर जड़ की क्रिया और राग की क्रिया में ध्यान नाम की धर्म की क्रिया को मानने लग गए हैं। इत्याज्ञानम, अज्ञानियों की ऐसी मान्यता को से जो करती कर्म प्रवृत्ति, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खड़ी हो गई है, अभिता समयद, उसे चारों ओर से समाप्त करते हुए, ये अभिता समयद समझिए ना, अभिता माने चारों ओर से, माने चारों ओर से माने इधर से ऐसा नहीं, माने किसी भी कोने से किसी भी रास्ते से वो कर्तृत्व का व्यामोह नहीं रहना चाहिए। ज्ञान ज्योति स्फुरति, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हुई, वो ज्ञान ज्योति उस कर्ता कर्म की जो अज्ञानियों की प्रवृत्ति थी, उस अज्ञानमय प्रवृत्ति का निषेध करती हुई ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। वो कैसी है? अत्यंत धीर है और परम उदात्त है, ठीक है ना। ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात अत्यंत धीरम। पिछले अधिकार में लिखा था कि वो उदार है और धीर है। जीवा जीवा अधिकार में इस ज्ञान ज्योति को जो नमस्कार किया था तो उसे उदार और धीर बताया था। तो यहां परम उदात और अत्यंत धीर, कितना ज्यादा उम्र क्यों लगा दिया भैया? वो पर में एकत्र तोड़ना उतना कठिन नहीं है, वो धीर से ही काम चल जाएगा, उदार व्यक्ति से ही काम चल जाएगा। लेकिन ये कर्तृत्व भोक्तृत्व छुड़ाना अत्यंत धीरता और अत्यंत उदारता का, परम उदारता का काम चाहिए। मैंने ये उससे कठिन चढ़ाई है, समझे ना। ये जो टोंके बंदना तुम करके आ गए हो ना जीवा जीवाधिकार में, इससे इसमें दूनी मेहनत होगी। ये तो हर एक आदमी मानने को तैयार है क्या? ये मकान जुदा है और मकान में मैं जुदा हूं, ये स्त्री जुदी है और मैं जुदा हूं, बच्चा जुदा है और मैं जुदा हूं, ये मानने को तो तैयार है। और आज के जमाने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, ये मानने को भी तैयार है। लेकिन मैंने किसी का कुछ किया ही नहीं, ये मकान मैंने ही नहीं बनाया, मुझे अपने आप से बन जाता है ना, टीवी पे धड़ाधड़ा से बन जाती, बिल्डिंग पूरी खड़ी हो जाती एक सेकंड में, ऐसी खड़ी हो गई। ये मानना चाहना तैयार नहीं, और हम इसका उपयोग भी नहीं कर सकते, ये मानने को कोई तैयार नहीं। आप सुनिए, ये कितना कठिन काम है। हमने समझाया कभी स्त्री जुदी हो तुम जुदा, बेटे जुदा है तुम जुदी हो, क्यों? तुम चले जाओगे बेटा यहीं रहेगा, बेटा बंबई चला गया तुम यहीं रह गए, जुदे नहीं होते तो ऐसा क्यों होता? तो जुदापन ख्याल में आ जाता क्या? नहीं। तो आज कोई किसी का मालिक नहीं है, तुम उसके मन की बात कहोगे तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा, ये समझ में आ जाता है। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं है, मैंने 9 महीना पेट में रखा, 18 महीना गोद में रखा, ऐसा पाला, खुद भूखा रहा, उसको खिलाया पिलाया, लाखों रुपया कर्जा लेके पढ़ाया, तुम कहते कुछ किया ही नहीं क्या? बोला है ना, कठिन कठिन चढ़ाई है ना। खैर चलो, नहीं किया सही, लेकिन हमारा भी अधिकार भी नहीं है, ये बुढ़ापे में हमें देखेगा भी नहीं क्यों? हमने ये बात सुनने को तैयार नहीं, इसलिए ये काम बहुत बड़ा काम है, इसके लिए अत्यंत धैर्य चाहिए और परम उदारता चाहिए, तब जाकर के ये काम संपन्न होगा। ऐसे ज्ञान को जो विश्व को साक्षात करता है, निरुपधि है, जिसमें ये सब चीजें पृथक पृथक भाषित होती हैं, मैं उसको याद करता हूँ, माने नमस्कार करता हूँ, स्मरण करता हूँ, जो भी समझ लो, हिंदी का छंद पढ़ लो, इसका और विशेष अर्थ मैं कल बताऊंगा। मैं एक चर्चा विस्तार से कर रहे हैं, परमोदात का क्या मतलब है, अत्यंत धीर का क्या मतलब है, वो सब बात कर रहे हैं।